खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में तूने कहा कि जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे बाप आसमानी तुम्हारे लिए करेगा। आज की सुबह, आज की मुबारक खुदावंद खुदा इस घड़ी में हम सब ने यीशु मसीह के नाम में बरकत चाही है और खुदावंद खुदा ये बात हम इस बात की खुदावंद खुदा तरफ लेकर जाती है कि यकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। खुदावंद आज की सुबह कोई भी जिंदगी यहाँ से खाली ना जाए, जब कलाम का बीज बोया जाए एक एक जिंदगी बरकत पाए और सारा जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाएगी, थोड़ी सी बात कम कर दे, शुक्रिया। तशरीफ रखे, खुदावंद आपको बरकत दे जी। कोई और माइक दे दे तब तक। हालेलुया, ये ठीक है। हालेलुया। सो आज की सुबह हम खुदा के कलाम में से चंद एक सच्चाइयों को सीखेंगे और खुदा के कलाम में से देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है खुदा के वक्त के बारे में, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर एक की क्या हो जी, तौबा तक नौबत पहुंचे। जब आवाज की किताब उसके तीन बाब को देखते हैं तो पहली आयत में लिखा है कि हर चीज का एक मौका और काम है जो आसमान के नीचे होता है, हर एक चीज का क्या है जी, एक वक्त है। मुझे नहीं पता कि आज आपकी जिंदगी में वक्त कैसा चल रहा है, हो सकता है भलाई के काम हो रहे हो सकता है कि बदहाली जा रही हो सकता है कि मुश्किलात का सामना हो, आजमाइश का सामना हो सकता है कि आप रूहानी मेयार में उस बहुत सी ऊंचाई पर खड़े हैं जहां पर आपका और खुदावन का तजर्बा कैसा है, जैसे पतरस यकूब और यहन्ना का उस पहाड़ पर था जब यीशु मसीह की सूरत बदल गई। मुझे नहीं पता कि आज आप मौत के साया की वादी में से गुजर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आज आप यशुआ और कालब की तरह जंग लड़ रहे हैं और आपके पीछे दुआ करने वाले अपने हाथ उठाए खड़े हैं। मुझे नहीं पता खुशहाली है, लड़ाई है, झगड़ा है, और या फिर समझ नहीं आ रही कि मैं दो तरहों पर खड़ा हूं कि किस तरफ जाऊं। अगर मैं दाएं तरफ जाता हूं तो वहां पर मुश्किलात हैं, वहां पर क्या है जी, बहुत सी मुसीबतें हैं, लेकिन उसके आखिर में क्या है जी, खुदावंद खुदा अपनी बरकत का क्या है जी, फजल वाला मी बरसाएगा। और जो बाईं तरफ रास्ता जाता है वो खुशहाल तो नजर आता है, सादा तो नजर आता है, आसान तो नजर आता है, लेकिन उसके आखिर में क्या है जी, भलाई नहीं, सदाकत नहीं, क्या है जी, मुश्किलात हैं। सो मुझे नहीं पता कि आज आप कौन से वक्त में से गुजर रहे हैं, आपकी जिंदगी में क्या सीजन चल रहा है, पैदावार का है, कांट छांट का है, खुदाई का है, खाद करने का है, पानी लगाने का है, तामीर करने का है, या काटने का है, या फिर क्या है जी, खुदावंद यीशु मसीह फल तलाश करने के लिए आपकी जिंदगी में दरवाजा खटखटा रहा है। मुझे नहीं पता, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि आसमान के नीचे जो कोई काम होता है उसका क्या है जी, एक वक्त है। तो आज मैं चाहता हूं कि नए अहदनामा में से एक जिंदगी के बारे में सीखें। ये जिंदगी हमें क्या है जी, बाइबल मुकद्दस में लूका की इंजील उसके 19वें बाब में मिलती है। जब हम उसकी पहली चार आयात को पढ़ते हैं तो यहां पर यूं लिखा है, यहां पर यीशु मसीह अपने शिगिर्दों के साथ है और बड़ी भीड़ उसके साथ है, तो क्या लिखा है, वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था, बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक बूवर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो उसी राह पर से जाने को था। जब हम पहली चार याद को देखते हैं तो यहां पर जो हमें माहौल नजर आ रहा है क्या है, यीशु मसीह यरूशलम की तरफ जाते हुए क्या है जी, इस गांव में से उसे गुजर कर जाना जरूर है। याद है एक सामरी का वाक्या कि जो कोई यरूशलम जाता था उसे यरू से होकर जाना जरूर था, और ये रास्ता क्या था जी, आसान था क्योंकि बहुत से लोग सामरियों के गांव में से गुजर कर नहीं जाते थे क्योंकि उनको नापाक समझते थे। तो यहां यीशु मसीह यरू से होकर जा रहा है, वहां पर एक शख्स है जिसका नाम क्या है जी, जकई। जकई के जब नाम के मायने को देखते हैं तो जकई का मतलब है रास्तबाज या पाक। उसके नाम का मतलब पाक है, लेकिन उसके जब काम धंधे को देखते हैं वो क्या है जी, नारास्ती के काम है। लोगों की नजर में वो क्या है जी, खून चूसने वाली जोक है। याद है ना जी आपको कि अगर किसी के बदन में खून खराब हो तो उसका देसी इलाज क्या किया जाता है, उसे जोकें लगाई जाती हैं ताकि वो खून उसमें से चूसा जाए और वो क्या हो जी, बंदा सेहतमंद हो सके। इस महसूल लेने वाले सरदार को क्या कहते थे जी लोग, कि ये क्या है जी, नाहक महसूल लेता है, और उनके सामने ये क्या था जी, नापाक नारास्त बंदा था, जिसको दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे जी, वो अपने नाम के मुताबिक किसी की बहाली खुशहाली के बजाय क्या कर रहा था जी, अपने नाम के उलट जिंदगी बसर कर रहा था, और वो क्या थी जी, नारास्ती की जिंदगी। वो महसूल लेता था, और महसूल लेने वालों का काम बहुत दफा क्या था जी, यहूदियों में बदनाम था, क्योंकि वो पहली बात तो यहूदियों के लिए काम करते थे, और दूसरी बात वो जब अपने यहूदी भाइयों से महसूल या चुंगी या टैक्स लेते थे तो यहूदी इस बात से चिढ़ खाते थे और उनको क्या कहते थे, ये गद्दार है। सो जकई को यहां पर देखते हैं और उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है जी, वो महसूल लेने वाला और दौलतमंद था, और यीशु को देखने का क्या था जी, मुश्ताक था। आज हम इस वाक्य में देखेंगे कि यीशु और जकई की मुलाकात का एक वक्त बनाई आलम से पेशतर से मुकरर हो चुका था कि वो वक्त आएगा जब जकई यीशु की क्या करेगा जी, उस सूरत को देखेगा जिसके बारे में उसने सुना हुआ है। क्योंकि यीशु और जकई की मुलाकात को देखते हैं, यीशु जकई को अजल ही से जानता था, और छोटे कद वाला जो क्या था जी, शिकस्ता दिल बंदा, जिसे सासे कमतरी का शिकार कह सकते हैं। जब हम में कोई पूरा क्या हो जी, मेयार ना पाया जाए, मिसाल के तौर पर अगर किसी का हाथ खराब हो तो लोग उसे क्या कहते हैं जी, बातें करते हैं। अगर किसी का मुंह खराब हो तो लोग उसे कहते हैं इसका मुंह देखो। अगर किसी का रंग खराब है तो उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। अगर कोई चल फिर या ततल कर बोलता है तो लोग उस पर उंगली उठाते हैं। यहां पर जकई क्या है जी, छोटे कद वाला है, और गालबन उस पर उंगलियां उठाई जाती होंगी कि ये कद में तो छोटा और मर्तबे में कितना बड़ा है कि महसूल लेने वालों का सरदार है। असासे कमतरी का शिकार था, दुनिया में गुमशुदा भेड़ की मानद यीशु को देखने की कोशिश के लगा हुआ था कि वो कौन सा है। जकई यीशु को देखना चाहता था, और यीशु उसकी तलाश में अजल ही से था, क्योंकि यीशु मसीह ने हर एक के लिए वक्त मुकर्रर किया है, क्योंकि वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता है, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। हम तस्वीरों के वसीला से देखेंगे यीशु क्या कर रहा है जी, यरू के इलाके में जा रहा है। बेटा यहां से उठो, पीछे चलो, बड़ी भीड़ यीशु के साथ है, और इस भीड़ में क्या है जी, जब देखते हैं तो जकई क्या है जी, इस बात के बारे में सोच रहा है कि उसने यीशु के बारे में सुना हुआ है, वो मौजजात करता है, वो अजीब अजीब काम करता है, उसके काम निराले हैं, उसने उसके बारे में सुना हुआ है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है उसने यीशु को क्या है जी, देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, और देखने के लिए उसके दिल की ख्वाहिश क्या है। जब वो सुनता है कि यीशु गांव में आ रहा है तो क्या है जी ज़कई इंतजार कर रहा है कि मैं कैसे उसको मिलूं। तो वो क्या करता है, उस भीड़ में से यीशु को देखने की कोशिश करता है कि यीशु कौन सा है, लेकिन अपने छोटे कद के बायस वो उसे देख नहीं पाता। और क्या होता है जब हम आगे पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस कहती है जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द नीचे उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। हर एक चीज का वक्त है और यीशु ज़कई को अजल ही से जानता था। और यहां पर यीशु मसीह से क्या करता है, उसके नाम से पुकारता है, उसके नाम से उसे पुकारता है और उसे कहता है कि ऐ ज़कई जल्द नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में रहना जरूर है। ये सैमुएल नबी वाली वो बात है जब सैमुएल यस्सी के घर में उसके 8 बेटों को 7 बेटों को देख रहा है, सबसे बड़े को, उससे छोटे से, उससे छोटे को, किसी का कद, किसी की माहर कारागरी के बारे में सुना, ये तीर कमानी करता है, ये तलवारबाजी करता है, ये क्या है जी पहली सफ में खड़ा होकर सौल बादशाह के पीछे जंग में गया है और उसने देखना शुरू किया कि इनमें बहुत सी खासियत लियाकतें पाई जाती हैं। और सैमुएल भी कहता है हो सकता है कि अलियाब हो सकता है कि अमिताभ हो सकता है कि सम्मा हो, उनमें से कोई भी नहीं था। और खुदा खुद कहता है कि सैमुएल तू इंसान होते हुए जाहरी सूरत पर निगाह करता है, मैं दिलों पर नजर करता हूं। सो यीशु ज़कई के दिल से वाकिफ था, उसकी जरूरत से वाकिफ था, उसके अरादे से वाकिफ था कि उसने अरादा कर लिया है कि वो यीशु को देखेगा। वो उस कोशिश में है और उसकी कोशिश नजर आती है कि पिछली आयत में लिखा है वो भाग कर क्या करता है जी गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है, अपने छोटे कद को रुकावट नहीं बनने देता, भीड़ को रुकावट नहीं बनने देता और शर्मिंदगी का वो सामना करते हुए कि कोई कहेगा कि ये देखो ये छोटा पौना क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सत्या गया है, इसे क्या हो गया है। बहुत से जुमले उठाए गए होंगे लेकिन उसने क्या किया, ना शर्मिंदगी को, ना भीड़ को, ना अपने कद को रुकावट बना दिया। उसने क्या कहा, अब यीशु के पास मुझे जाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, मुझे यीशु के पास जाने दो, मैं अपने कद को, अपनी तमाम दुनियावी रुकावटों को, किसी बात को मुश्किल बनने नहीं दूंगा, मैं उसे तलाश करूंगा। और यीशु जानता था कि मैं तो पहले ही उसकी तलाश में हूं। यीशु से नाम से कहता है ऐ ज़कई, याद है यीशु मसीह ने क्या कहा था, अच्छा चरवाहा मैं हूं। पुराने अहदनामा में जब हम यशाया नबी का सहीफा पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा अपनी जात के बारे में हमें क्या कहता है, मेरे साथ देखें यशाया नबी का सहीफा उसका 40वां बाप, जब हम उसकी 26वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर खुदा का बंदा यशाया खुदा की जात के बारे में कहता है कि वो कैसा इल्म रखता है, उसे माजी का, हाल का, मुस्तकबिल का, आने वाली हर एक चीज का, हर एक वाक्या का क्या है जी पता है कि क्या होगा। और जब हम 26वीं आयत को देखते हैं तो यहां पर खुदा की सिफात को, उसकी जात को, उसके इलम को, उसकी कुदरत को और उसकी लियाकतों को बयान किया गया है। और खुदावन का बंदा यशाया कहता है अपनी आंखें ऊपर उठाओ, जरा ऊपर देखे जी, सब ऊपर देखना शुरू करें, अपनी आंखें ऊपर उठाओ और देखो कि इन सब का खालिक कौन है। इर्द गिर्द देखें, पहाड़ों को, जंगलों को, समंदरों को, पानी के जानवरों को, रींगने वालों को, उड़ने वाले को, बोलने वाले को, भौंकने वाले को, चलाने वाले को, गीत गाने वाले हर चरिंद पिंद को देखो और कहो कि इनका खालिक कौन है। वही जो इनके लश्कर को शुमार करके निकालता है। यहां पर जो लफ्ज लश्कर का इस्तेमाल किया गया है, इंग्लिश जबान इसे बयान करती है, अबरानी इसे बयान करती है, लश्कर किनको कहा गया है जी, सितारों को कहा गया है, फरिश्तगान को कहा गया है। पदेश दो बाप के जब आखिर में देखते हैं और खुदा ने जब सब कुछ तैयार किया और उसने क्या किया, आसमान के लश्कर को बनाया, यानी कि उसने बहुत से फरिश्तों को फिर पैदा किया, अपने मुंह के कलाम से उसने फरिश्तों को वजूद बख्शा। और यहां पर लिखा है कि इनके लश्कर, एक लश्कर में रूमी गिनती के मुताबिक कितने सिपाही होते थे? 6,000। और यहां पर खुदा क्या कहता है, यशायाह नबी कहता है वो उनके लश्करों का क्या करता है, शुमार करता है, गिनती करता है। यानी कि खुदा आसमान के हर सितारे के नाम से वाकिफ है, हर फरिश्ते के नाम से वाकिफ है। यशायाह नबी इस बात को कहता है कि आगे लिखा है वो उन सब को नाम बनाम जानता है। जैसे आज हम देख रहे हैं, उसने यीशु ने जकई को देखा, उससे उसे वाकिफ नहीं, लेकिन उसे कहता है ऐ जकई तू नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर रहना जरूर है, आज तेरे साथ रफाकत करना जरूर है, जिस बात का तू मुंतजर था उसका वक्त आ चुका है। मैं बनाए आलम से पेशतर से इस बात का मुंतजर था कि तेरे साथ रूबरू बैठकर तुझको बताऊं कि तेरे नाम का मतलब सदाकत है, तेरे नाम का मतलब पाकीज़गी है। और आज वो तेरे दरमियान है जिसके बारे में मलाकी नबी ने कहा है कि आफ्ताब सदाकत ताला होगा, उसकी किरणों से शिफा होगी, वो रास्तबाजों का रास्तबाज, वो कदूस इसराइल की उम्मीद आज तेरे घर उतरेगा और तेरी नापाकी को क्या कर देगा, पाकीज़गी में बदल देगा। सुकई इस बात को सुनता है और यशायाह कहता है कि वो हर एक सितारे को, हर एक फरिश्ते को क्या करता है जी, नाम बनाम जानता है। और ज़बूर की किताब में भी लिखा है कि वो अपने सब फरिश्तों को नाम बनाम जानता है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील में, मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता हूं। आज की सुबह वो आपका नाम जानता है, आज की सुबह वो जानता है आपकी मुश्किल को, आपके हालात को, आपकी कमजोरी को, आपकी हौसला अफजाई किन बातों में चाहिए वो जानता है। और आज वो आपको नाम बनाम बनाना चाहता है कि मेरे साथ रफाकत रखो, क्योंकि खुदा नूर है और उसमें जरा सी भी तारीकी नहीं। और नूर में चलने के लिए, नूर में बैठने के लिए हमें नूरानी खुदावंद को कबूल करना होगा। खुदावंद खुदा उसे कहता है ज़कई नीचे उतरा, वो जल्द उतर कर खुशी को, खुशी से क्या करता है, उसको अपने घर ले जाता है। जब लोगों ने ये देखा तो बुड़बुड़ा कर कहने लगे वो तो एक गुनाहगार शख्स के हां जा उतरा। यीशु मसीह ने क्या कहा था, जब फरीसी फकीर रब्बी उस पर उंगली उठाते थे, कहते थे ये शराबियों गुनाहगारों और खाऊं और हर तरह के गुनाहगारों के साथ खाता पीता है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि बीमार को डॉक्टर की जरूरत है, तंदुरुस्त को नहीं। वो जानता है कि बीमारी किसको है और उस बीमारी का इलाज यीशु मसीह के पास है। आज वो आपके दिल के रोग को जानता है, आज आपके इम्तहान को वो जानता है, आज आपके वो दरमियान यहां पर मौजूद है और आज वो आपको बुलाएगा, आप पर अपनी मर्जी को जाहिर करेगा। और क्या देखते हैं, ज़कई दरख्त पर बैठा इंतजार कर रहा है कि उसे पता है कि उसने उस रास्ते से जाना है, उसे पता है वो उस रास्ते से गुजरेगा, इसीलिए पहले से उसने तैयारी कर ली है कि मैं क्या करूंगा, यीशु को देखूंगा। और यीशु को देखने के लिए वो क्या करता है जी, आगे जाता है। और यीशु मसीह जब उसे देखता है तो कहता है ज़कई नीचे उतरा, नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर जाना है। और जब हम देखते हैं जब वो यीशु उसके साथ जाने को तैयार होता है तो लोग क्या करते हैं, बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, गुड़गुड़ाना शुरू कर देते हैं, शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। और ये आज का भी क्या है जी, मसला है। जब कोई तौबा करता है तो बथेरे लोग कहते हैं इसने तौबा कर ली, इसने यीशु को कबूल कर लिया, क्या इसके खानदान से कोई अच्छी चीज निकल सकती है, वो ये गवाहगार हो गया है, ये बाइबल पढ़ना शुरू कर दी है, इसने ये कर दिया है। लोगों के इस तमाम बुड़बुड़ाने को ज़कई ने अपने कानों के नीचे खुजली करने नहीं दिया। उसने कहा तुम जो कुछ कहते हो कहते रहो, मैं आज उस निजात दहिंदा के साथ क्या करूंगा जी, रफाकत करूंगा। सो लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, जैसे उस दौर में बुड़बुड़ाते थे आज भी बुड़बुड़ाएंगे जब आप कहेंगे मैंने यीशु को अपनी जिंदगी दे दी है, मैं यीशु के साथ चलूंगी, मैं चर्च जाया करूंगी, मैं सुबह की इबादत में भी जाऊंगी, मैं घरों में भी विजिट करूंगी, मैं घर में कलाम पढ़ूंगी, मैं क्या करूंगी, दुआ करूंगी। और आपकी जो सहेली या आपका जो सहेला यानी के दोस्त है वो अगर इससे वाकिफ नहीं तो वो कहेगा ले नमाजी हो गई है, पहले तो मैं बैठ के नाम तीन तीन किश्तां कठिया देख लेंदी ते हूं ते मैनू टाइम नहीं दिंदी, पहले तो हम ये करते थे वो करते थे, अब इसे क्या हो गया, इन्हें तौबा कर ली। लोगों के बुड़बुड़ाने को मत सुने, क्योंकि अगर लोगों का बुड़बुड़ाना सुनेंगे तो हम कभी भी यीशु के साथ हकीकी रफाकत रख नहीं सकेंगे। सो लोग बुड़बुड़ा रहे हैं और यीशु मसीह ने क्या कहा, जब हम इस आयत को देखते हैं, इस पैगाम को देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह सही जगह पर सही वक्त पर हमेशा मौजूद होता है। आज आपका जैसा भी माहौल है, जैसे भी हालात हैं, तंगी है, बीमारी है, मुश्किल है, लड़ाई है, झगड़ा है, समझ नहीं आ रही कि किधर जाना है, या खुद गर्जी के नशे में इतने अंधे हो चुके हैं हमें समझ नहीं आ रही, तो यीशु मसीह क्या है जी, वो मौजूद है और कोई उसे देखे ना देखे, सुने या ना सुने, लेकिन वो देखता और सुनता और बचाता है, देखता है, सुनता है और बचाता है। उसने कभी भी देर नहीं की, जब जरूरत थी कि वो सामरिया के उस गांव में जाकर उस औरत के साथ बैठकर उस कुएं पर उससे कहे कि मुझे पीने को पानी दे, तो उसे जरूर था कि वो सामरिया में हो ठीक वक्त पर ठीक जगह पर, ताकि उस औरत को जो सवालों से अपना दिल भरे हुए लय फिर रही है कि मैं क्या करूं, मैं मोहब्बत की तलाश में हूं, पहले सालों से मुझे मोहब्बत नहीं मिली, दूसरे से नहीं मिली, तीसरे से नहीं मिली, चौथे से नहीं मिली, पांचवे से नहीं मिली, अब जो मेरे साथ है वो भी ऐसे लग रहा है कि जैसे बादलों की तरह है कि कब 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 वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। यीशु मसीह ने उससे कहा कि जब सारा भेद उसे बयान कर दिया तो उसने कहा मुझे फुरस्त मिल गया है, यानी वो नबी वो मसीह जो आने वाला था वो मिल गया। उसने सारे गांव में जाकर क्या कर दिया जी, शोर पाना शुरू कर दिया, मुझे वो मिल गया है जिसने मेरा सब कुछ मुझे बता दिया। उसके लिए वक्त था। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं वो हर जगह हर वक्त मौजूद है अपनी मर्जी अपना जलाल जाहिर करने के लिए। जो कुछ सवाल आज आप देखना चाहते हैं मेरे साथ देखें, जब हम पदेश 12 बाब उसकी 17 आयत को देखते हैं, यीशु का खुदावन का फरिश्ता क्या था जी, मिस्र में सारा के साथ मौजूद था। जब फरौन उसको अपनी बीवी बनाना चाहता था तो खुदा ने ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि इसे मत छूना, और फरौन के घर पर उसने क्या भेजी जी, बीमारी भेजी, लानत भेजी, और फरौन ने तौबा की और उसने कहा कि इब्राहिम तूने मुझसे झूठ बोला, अपनी इस बीवी को ले जा, और उसने उसे माल दौलत दाम सब देकर कहा कि यहां से रवाना हो, और उसके लिए स्पेशल फोर्स भेजी के इसे बाहफाजत मिस्र की हद से बाहर लेकर जाओ। उस रात सारा के साथ खुदावंद मौजूद था कि फराउन की हबस से उसे बचाए। सदूम और अमूरा के वक्त खुदावंद मौजूद था कि वो लूत और उसके खानदान को बचाए और उनको बाहफाजत उस कहर से निकाले। पदेश 19वां बाप उसकी 15 आयत, इसहाक की कुर्बानी के करने के वक्त खुदावंद मौजूद था कि इब्राहिम मेरा ताबेदार, मेरा वफादार और मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार है। जैसे ही उसने छुरी को उठाया और इसहाक के ऊपर वो चलाने लगा है, उसे चलाने लगा है, आसमान से आवाज आई, इब्राहिम इब्राहिम अपने हाथ को लड़के पर मत चला क्योंकि मैं यहां पर मौजूद हूं। वहां पर मौजूद है। पदेश 22वां बाब, बियाबान में इसराइल के साथ बादल के सतून में और आग के सतून में खुदावंद उनके साथ मौजूद था। खुदा ने ना सिर्फ उनको मिस्र से निकाला, जब मिस्री उन पर चढ़ आए तो उसने क्या किया, आग का सतून उनके और मिस्रियों के दरमियान खड़ा कर दिया और इस तस्वीर को जाहिर कर दिया कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, इब्तिदा और इंतहा हूं, जिनके साथ मैं दिल लगाता हूं उनसे मैं कभी भी बेवफाई नहीं करता। वो वहां पर मौजूद था कि इसराइलियों को मिस्रियों से बचाए। खरूज 13 बाप उसकी 11 आय से 21वीं आय तक, बहरे कुलजम से गुजरने के वक्त खुदावंद वहां पर मौजूद था। खरूज 14 बाप जब खुदा ने कहा अपनी लाठी उठा मूसा और जैसे मैं कहता हूं कर, क्योंकि आज जो तेरे पीछे आते हैं, आज जो तुम्हें हलाक करना चाहते हैं, वो और उनमें से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा कि जाकर किसी को बताए। आज मैं अपनी फतह को जाहिर करूंगा, आज मैं बहरे कुलजम में वो काम करूंगा जो पूरी कायनात में पहले कभी नहीं हुआ। और खुदावंद मूसा का हाथ बनकर वहां पर मौजूद था। शकील जब तूफान से डरे हुए थे, तूफान के रोकने के वक्त यीशु मसीह वहां पर मौजूद था। मुझे नहीं पता आज आपकी जिंदगी में कैसा तूफान है, बीमारी का, लाचारी का, फरेब का, परेशानी का, शक का, ना सीधी राह पर चलने का। खुदावन खुदा तूफानों को थमाने की कुदरत रखता है। जब वो डरे हुए थे, जब वो घबरा रहे थे, यीशु ने उठकर कहा, हवा और पानी को कहा थम जा, और वो थम गए। वो वहां पर मौजूद था, वो मौजूद था आग की भट्टी में सदरक मीसक अब्दुल नजू के खाद, वो मौजूद था शेरों के मुंह को बंद करने के लिए दानियल के साथ, के उन शेरों को उसने कहा कि मैं वो यहूदा का शेर बबर हूं और तुम मेरे चुने हुए को छू नहीं सकते। वो मौजूद था उस शेरों की गार में, वो मौजूद था स्टेफनस को जब संसार किया जा रहा था, वो आसमान पर खड़ा कह रहा है ऐ मेरे प्यारे मैं तुझे अपनी बादशाही में कबूल करूंगा। वो स्टेफनस के उस संसार किए जाने पर मौजूद था, वो पालूस और सलास के कैदखाने में मौजूद था, वो डाकू को निजात देने के लिए सलीब पर मौजूद था। आज की सुबह वो यहां पर मौजूद है कि आपको रहाई दे, आपके साथ रफाकत करे, आपको बहाल करे और आप पर जाहिर करे कि जिस राह से तुम मुड़े थे मैं उस राह को फिर तैयार करूंगा, क्योंकि उस राह को दुरुस्त करने का मुझे ही इख्तियार है। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि राह हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे बगैर बाप के पास जा नहीं सकता। यीशु मसीह सही वक्त पर सही जगह पर मौजूद है। आज आप में से बहुत हैं जो सही वक्त पर सही दिन में सही पैगाम को सुनने के लिए यहां पर आए हैं, और इस पैगाम को आपको सुनने के लिए हो सकता है 5 साल लगे हो, 10 साल लगे हो, 1.5 साल लगा हो। पहले आपने कभी अपने कान खुदा की तरफ नहीं लगाए, पहले कभी अपना दिल खुदा की तरफ कायल नहीं किया, पहले कभी भी इस तरह से उस पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन आज वो खास दिन है कि खुदावंद खुदा यरू और आरवाला की इस कलीसिया में बथेरे के लिए क्या करेगा जी, रफाकत और शराकत और बहाली और रूहानी तंदुरुस्ती का क्या बनेगा जी, बाइस बनेगा। और मेरी दुआ है कि हम यहां पर भी मौजूद हैं जकई की तरह उसे देखने के लिए, उसे सुनने के लिए, उसे कबूल करने के लिए, उसे अपने घरों में जगह देने के लिए। क्योंकि आगे क्या लिखा है, यीशु को जब देखते हैं, यीशु को क्या किया गया है जी, जकई अपने घर ले गया है, वहां पर रफाकत और शराकत हो रही है, वहां पर बड़ा जबरदस्त माहौल चल रहा है। जकई यहां पर अपनी शख्सी जिंदगी के तमाम बयानात को करते हुए यीशु मसीह को क्या कहता है, यीशु मसीह को कहता है, जकई ने खड़े होकर खुदावन से कहा ऐ खुदावन देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ ना हक लिया है तो उसे चौगुना, एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, तीन गुना नहीं, मैं क्या करूंगा, अपनी जिंदगी का इजहार इस बात से करूंगा कि मैं 4 गुना खुदावन खुदा खुशी में क्या करूंगा, जिनसे ना हक लिया है वापस करूंगा। और वो क्या करता है, ये 4 गुना चार गुना वापस करता है। यीशु ने जब देखा तो क्या हुआ, यीशु ने उससे कहा आज इस घर में निजात आई है, इसलिए ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम थोड़े लोगों को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। हालेलुया। जकई उसकी तलाश में है, यीशु उसको ढूंढने के लिए आसमान छोड़कर यहू की उस गलियों में आया है। आज वो यहां पर मौजूद है कि हमको भी क्या करे जी, अपनी उस नजात से क्या करे जी, वाकफ करवाए। और क्या लिखा है, वो खड़ा होकर बात कर रहा है, बयान कर रहा है, इजहार कर रहा है कि मैं ये करने वाला हूं, यीशु तूने मेरे लिए ये किया है, इसलिए मैं अपनी खुशी का, अपनी तब्दीली का, अपने तब्दील शुदा दिल का इजहार किस तरह करूंगा, अपने उस कारोबार में जो मैंने बेईमानियां की हैं, ना हक लिया है, जो मैंने अपने नाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी, कि मैं रास्ते पास था, मुझे अपना कारोबार रास्ते से करना था, मुझे अपने कारोबार में तुझे रास्ते से अव्वल दर्जा देना था, मैंने नहीं दिया, इसलिए आज मैं करता हूं उस सारी बातों का, गुनाहों का इकरार। और उसने अपना इकरार क्या किया, मैंने चौगुना क्या किया है जी, वापस करता हूं। सुनो भी, इसलिए बाइबल मुकद्दस में हम सबके लिए मौका है, बाइबल मुकद्दस, क्योंकि आज यहां पर कोई है जो अपना दिल यीशु को देगा, क्योंकि जकई क्या था जी, सरदार था और वो बहुत सी बातों से वाकिफ था, लेकिन शख्सी तौर पर यीशु को उसने अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया था। निकुदीमस क्या था जी, सरदार था, लेकिन शरीयत से वाकिफ होते हुए, कलाम से वाकिफ रखते हुए उसने अपना दिल यीशु को नहीं दिया था। बहुत से लोग हैं जो यीशु को जानते हैं लेकिन उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा अभी तक कबूल नहीं किया। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, रास्तबाज ठहराए जाते हैं। रोमियो 3:3 उसकी 23-24 आयत, सब ने गुनाह किया। आज अगर आप इस बात को समझते हैं कि मैं गुनाहगार हूं, मैं नापाक हूं, मेरे घर में, मेरे दिल में यीशु को उतरने की जरूरत है, अगर आपने पहले यीशु को अपना दिल नहीं दिया, तो आज की सुबह यहां पर आपके लिए वक्त है, क्योंकि यह वक्त इसीलिए खुदा ने दिया है कि आज इस पैगाम के वसीला से क्या हो जी, बरकत पाए। क्योंकि कलामे खुदा में लिखा है, हिजकिय्याह 14:4 उसकी 14 आयत में, अगरचे तीन शख्स नूह, दानियल और अय्यूब उनमें मौजूद हो, तो भी खुदावन फरमाता है कि वो अपनी ही सदाकत से फक्त अपनी ही जान बचाएंगे। ये ना कहें कि मेरा बाप एल्डर है, मेरा बाप फादर है, मेरा बाप बिशर है, मेरा बाप पादरी है, क्योंकि हर कोई अपनी ही रास्तबाजी से क्या करेगा जी, रास्तबाज ठहरेगा, क्योंकि खुदा की हजूरी में खुदा के पोते पोतियां नहीं, उसके क्या है जी, सब बेटे हैं। ये नहीं कि पादरी फैसल का बेटा जो इसराइल है वो निजात पा चुका है, नहीं, एक दिन इसराइल को खुदावन यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना होगा, ताकि वो अपनी रास्तबाजी के उस इकरार से कि यीशु को उसने अपना रास्तबाज हकीकी कफारा माना है, वो क्या है जी, निजात याफ्ता ठहरेगा। और इसीलिए खुदा का कलाम क्या कहता है, उस शहर में, उस गांव में, उस इलाके में अगर नूह हो, दानियल हो, अय्यूब हो, जिनको रास्तबाज कहा गया है, तो वो भी अपनी रास्तबाजी के बायस क्या पाएंगे जी, खुदावंद की सदाकत से क्या करेंगे जी, बचेंगे। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। इसलिए आज की आपकी शाम, आज की सुबह आपके लिए दावत है, यीशु मसीह इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। यहां पर एक बहन है उसने एल्डर सेबान को बताया कि मेरी शादी होने से पहले मैं जब यहाँ पर आई मुझे कुछ दुआ के बारे नहीं पता था, कुछ कलाम के बारे में नहीं पता था, मसीह के बारे में नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर आकर पता चला है, इसलिए मैं यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना चाहती हूँ। मैं चाहूँगा कि सब अपनी आँखें बंद करें, कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा, और वो बहन भी और अगर कोई और है जो यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करना चाहता है वो अपने कदमों पर खड़ा हो जाए, क्योंकि हमारे नाम से मसीही लग जाने से हम मसीही नहीं होते, हमें मसीही बनने के लिए यीशु को कबूल करना होगा। सब आंखें बंद करेंगे और मैं चाहूंगा कि वो बहन अपने कदमों पर खड़ी हो जाए जिसने कहा था कि यीशु मैं तुझे अपना दिल दूंगी। सब आंखें बंद हो। हालेलुया। अगर कोई भाई है तो वो भी अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है, और अगर शर्म आती है तो ये आपके और खुदा के दरमियान है, और मेरे पीछे ये दुआ कह सकती हैं, कर सकते हैं, और इसका बाद में बता सकते हैं कि हाँ मैंने आज पहली दफा, इतने सालों से चर्च आ रही थी जा रही थी, कलाम सुना था या नहीं सुना था, कभी यीशु को अपना निजात दहिंदा नहीं माना, तो आज आपके लिए मौका है, क्योंकि खुदा का कलाम यूं कहता है कि जितनों ने उसे कबूल किया अपना निजात दहिंदा, अपने गुनाहों का कफारा और सलीब पर खुदा की तरफ से भेजा हुआ वो तोहफा, कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो दोजख में नहीं जाएगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। इस वक्त आप मेरे पीछे ये दुआ कर सकती हैं, कर सकते हैं। खुदावन खुदा, मैं अपना दिल, अपनी जान, अपनी ताकत, अपनी अकल से ना तेरी निजात को देख सकती हूँ, ना देख सकता हूँ, ना कमा सकता हूँ, लेकिन आज मैं यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूँ, कबूल करती हूँ कि वो मेरे गुनाहों के लिए मुआ, सलीब पर उसने कफारा दिया, कब्र में उतारा गया, मुर्दों में से जी उठा, तेरी दाहिनी तरफ बैठा है, और वो जल्द वापस आने वाला है ताकि जिंदों और मुर्दों की अदालत करे। तो खुदावन खुदा, मैं उसे कबूल करती हूँ ताकि जब अदालत के दिन खड़ी हूँ तो मैं यीशु मसीह के उन लोगों में शरीक हूँ जो लोग रास्तबाज कहलाते हैं, यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं, ना कि उन लोगों की जमात में जो आग की झील में डाले जाएंगे। सब सादा तौर पर कह सकते हैं, यीशु मैं तुझ पर ईमान लाती हूँ, अपना निजात दहिंदा कबूल करती हूँ, और मैं वो गुनाहगार हूँ जिसके लिए तू आसमान छोड़ कर आया। खुदावंद खुदा, आज के इस कलाम के वसीला से जिस किसी ने भी यीशु मसीह तुझे अपने दिल में जगह दी है, पहली दफा या फिर ना समझी की हालत में बहुत दफा तुझे इनकार किया है, अगर आज किसी ने तुझे अपना दिल दिया है तो तू उसके कफारे को, तू उसके इकरार को जानता है, और तू उसका नाम भी जानता है। छू बरकत दे, यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता हूं। आमीन आमीन। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां दीजिए।